ओम शांति।
समय की गति और पुरुषार्थ की सूक्ष्मता दुनिया में भी कहा जाता है। जो मनुष्य समय को पहचान लेता है, जो मनुष्य समय का लाभ उठाना जानता है, वो सदा ही सफल होता है। समय कितना सुंदर है हम सबके हाथ में, हम सब जानते हैं। कैसा है समय? संगम तो है ही, जबकि हमारा मिलन भगवान से हुआ है, जबकि मन चाहा भाग्य हम बना सकते हैं, सफलता का वरदान ले सकते हैं, अपने जीवन को जन्म जन्म को सुखी कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं जैसे चाहें। ऐसा सुंदर समय तो हमारे हाथ में है। बाबा ने आज तक समय के लिए जो कुछ कहा है उसमें सार यही है, एक एक सेकंड संगम युग का अनमोल है, जन्म जन्म का भाग्य बनाने का आधार है। इस समय को जो नष्ट करेगा क्या होगा? जो इस समय को नष्ट करेगा, एक समय आएगा, समय उनको नष्ट कर देगा। और जो इस समय को सफल करेंगे, एक समय आएगा, समय ऐसी आत्माओं के सिर पर डबल ताज रखेगा। समय बहुत बड़ी चीज है दुनिया में भी। आप सब जानते हैं जिसने अपना अपना बचपन, बचपन का समय अच्छी तरह बिताया है, उनका जीवन सुखों से, सफलताओं से भरपूर है। और जिन्होंने बचपन के 20 साल ऐसे ही बिता दिए, सब जानते हैं जीवन में क्या क्या कमी रह गई। हम सब का भी बचपन है संगम युग, पहला जन्म, अंतिम जन्म भी हम इसे कहते हैं, और पहला जन्म भी। इस समय में, इस बचपन के काल को जो आत्माएं यथार्थ रूप से सफल करना जान जाती हैं, वो महान बन जाती हैं। समय के साथ हम सब का भी महत्व है। समय हमें महत्व देगा अगर हम समय को महत्व देंगे। कितना समय बाकी है पुरुषार्थ का, ये प्रश्न पूछा जाता है। कितना समय है विनाश का, ये भी प्रश्न सामने आता है। क्योंकि आप सभी जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, वो इन दो बातों का उत्तर पाने के आधार पर अपने जीवन में कई निर्णय लेना चाहते हैं। विनाश कब होगा, कितने साल हैं, उस अनुसार कितना पैसा कमाएं, कैसे बिजनेस की प्लानिंग करें, बच्चों के लिए क्या करें, उस अनुसार कितना अपने को उलझाएं या उलझनों से निकाल लें, ये प्रश्न है। और बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न है, हरेक के मन में ये उठता ही है, और जिनके पास बुद्धि है उनको उठेगा ही। बहुत स्पष्ट जानकारी समय की आपके पास होनी चाहिए। समय को जिस तरह हम समझते हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूं। संगम युग का टोटल समय कितने साल है? 100 साल है, बाबा की मुरलियों में हमने सुन लिया है। 2036 से ये शुरू हुआ है और ये अंत हो जाएगा, 1936 से शुरू हुआ है और अंत हो जाएगा 2035-36 में। 100 साल हो गए। अब इसमें स्थापना का कार्य जो चल रहा है, ज्ञान देने का कार्य, आत्माओं को संदेश देने का कार्य, पावन बनाने का कार्य, इसके बाद ये जो काम चल रहा है इस समय, ये सिलेक्शन हो रहा है। किनका, किनका सिलेक्शन कर रहा है बाबा? जिनको उसे स्वर्ग की रजाई देनी है उनका सिलेक्शन। इलेक्शन होते हैं ना भारत में सब जगह, यहाँ एमपी एमएलए का और छोटे छोटे चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और ये चुनाव भगवान कर रहा है, बड़ा भारी इलेक्शन। सेलेक्ट करेगा वो उन्हें जिन्हें दो युग तक राज देना है। ये सारी मेहनत उनके लिए हो रही है। और जब ये इलेक्शन रिजल्ट आउट हो जाएगा इसका 8 और 108, जो सतयुग पर राज करने वाली आत्माएं हैं वो जब अपनी सीट ले लेंगे तो उनके द्वारा कार्य होगा सारे संसार को संदेश देने का, सारे संसार को पावन करने का, तत्वों को पावन करने का और विनाश का। इसी समय को हम कहेंगे प्रत्यक्षता और विनाश, जो बाबा की मुरलियों में सब सुनते आए हैं, जय जयकार और हाहाकार साथ साथ। उसके बाद ये प्रकृति शांत होगी, जैसे बाबा की मुरली में सुन रहे थे कि सबसे अधिक क्रोध आएगा प्रकृति को, जल और अग्नि दोनों तत्व बहुत क्रोधित होंगे और संहार करेंगे। उसके बाद ये प्रकृति के सभी तत्व शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे देवताओं का आगमन इस धरती पर होगा और देवता बड़े होंगे और 2036 में निश्चित रूप से उनको गद्दी संभाल लेनी चाहिए। अब इसमें मैं जो समय अपने लिए निश्चित रखता हूं और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो समय को जिस तरह से आंक रहे हैं उसके अनुसार, हम ऐसा समझते हैं कि ये 2 साल 94 और 95 हम सबके लिए सुंदर पुरुषार्थ का और स्वर्ण अवसर है, जिसको बाबा बार बार वरदान दे रहे हैं, समय को भी वरदान। इसमें हम आत्माएं और अपनी तैयारी करेंगी, जिनको जहां तक पहुंचना है वो इस समय में पहुंचेंगे। 96 से हम समझते हैं प्रत्यक्षता की शुरुआत और विनाश की शुरुआत। आप सब जानते हैं कि विनाश कोई एक दिन में या एक रात में होने वाली चीज नहीं है, संपूर्ण प्रकृति का परिवर्तन 5-7 साल लगेंगे उसमें, और ऐसा अंदाज किया जा सकता है राउंड अबाउट 2000 के आसपास, 2002-3 तक ये सभी विनाश का खेल भी पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ जय जयकार प्रत्यक्षता, प्रत्यक्षता में शिव बाबा की प्रत्यक्षता, उसके ज्ञान की प्रत्यक्षता, उसके सभी महान रत्नों की प्रत्यक्षता, हर आत्मा को अपनी प्रत्यक्षता, ये सब काम हो जाएगा। उसके बाद प्रकृति शांत होकर तैयार कर देगी अपने को देवताओं के आगमन के लिए और देवताओं का इस सृष्टि पर आना शुरू हो जाएगा। अब हमारे सामने मुख्य रूप से 2 वर्ष हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि 2 साल के बाद पुरुषार्थ नहीं चलेगा, पुरुषार्थ तो बाद में भी चलता रहेगा, जब तक ये शरीर रहेगा हम सब योग लगाते रहेंगे, अपनी धारणाओं को मजबूत करते रहेंगे। लेकिन जो आत्माएं इन 2 वर्षों में अपने को बहुत अच्छी स्थिति पर ले चलेंगी, उनके द्वारा स्थापना के कार्य में बहुत बड़ा कार्य होगा, बहुत बड़ा कार्य। वही इस सारे संसार में वैराग्य की लहर फैलाएंगे, वही इस सारे संसार को, पहले ब्राह्मण संसार को, विघ्नों से मुक्त करेंगे। जो बाबा ने चैलेंज दिया है पिछली मुरली में माया की सीजन के बारे में, ये माया सूक्ष्म रूप से काम कर रही है। आप लोगों ने रामायण आदि में सुना हो कि रावण हनुमान को रोकने के लिए या युद्ध में और कोई चाल चलने के लिए राम के रूप में, राम भक्तों के रूप में राक्षसों को भेज देता था। हनुमान भी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहा था तो एक राक्षस को भेज दिया था ना, जो राम के भगत के रूप में बैठा है हनुमान को रोकने के लिए, कोई नाम था ना उसका, महाबली कुछ कालनेमी। तो ऐसे ही माया बड़ी सुंदर रूप में बाबा के बच्चों के सामने आ जाती है। उसको पहचानना, उसके स्वरूप को जानना, कहीं उसको ही शिव बाबा ना समझ लें, कहीं उसको ही ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय ज्ञान न समझ ले, जो गलती ब्राह्मणों में कई आत्माएं कर रही हैं। इसलिए बाबा ने सावधान किया, चैलेंज किया कि माया के सीजन में माया के स्वरूप को जानकर उससे मुक्त हो जाओ। ऐसा न हो कि जन्म जन्म तो भटकते आए सत्य की खोज में, और जब सत्य मिला उसके बाद भी भटकना न छूटे, बहुतों को भटकने की आदत है, देखते हैं शायद और कहीं से कुछ मिल जाए, फिर भटकने लगते हैं। जहां भगवान से कुछ नहीं मिला और किसी से क्या मिलेगा। कई लोग सोचते हैं, आते हैं यहां भी अपने बाबा के बच्चे के फलाने के पास और देखाएं, शायद कोई अच्छी चीज मिल जाए। बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि अच्छाई सीखने में क्या बुराई है, अगर वहां से भी अच्छाई सीखी जा रही है तो बुराई क्या है। जो भगवान से अच्छाई नहीं सीख सकते वो मनुष्यों से अच्छाई सीखने चलते हैं। यह है माया का कालनेमी रूप, बड़ा सुंदर रूप। इस सब को पहचानना, अपने पुरुषार्थ को अच्छी गति देना, यही बुद्धिमानी है। तो समय का ऐसा विश्लेषण मैं कम से कम अपने लिए रखता हूं। ऐसा मैंने बाबा की साकार मूल्यों के आधार पर और अव्यक्त मूल्यों में जो सूक्ष्म इशारे या पर्सनल मुलाकातों में जो सूक्ष्म इशारे मिले हैं उनके आधार से समय को एनालिसिस किया है। तो हमारे सामने सुंदर मौका है, क्योंकि ये तो होगा नहीं ना कि संगम युग हजारों साल चलता रहेगा, इसको तो समाप्त होना ही है। संगम युग कोई सब आत्माओं की इंतजार भी नहीं करता, सब तैयार हो तब इसकी समाप्ति हो, समय कभी किसी की इंतजार नहीं किया करता। परंतु अब ये समय की बलिहारी है कि समय कुछ महान आत्माओं की इंतजार करता है, कुछ महान आत्माओं की। उन महान आत्माओं को समय की इस बात को समझकर अपने को तैयार कर देना चाहिए, क्योंकि समय सदा ही तैयार इंतजार नहीं करेगा। एक समय आएगा जब समय उन आत्माओं को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। तो इस थोड़े समय में अब आप स्वयं सोच लें, स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लें, कितना समय पुरुषार्थ के लिए बाकी है। जिस पुरुषार्थ का बहुत महत्व है वो समय थोड़ा ही है, 2 या 3 साल, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। उसके बाद पुरुषार्थ तो होगा लेकिन वो प्राप्तियां नहीं होंगी जो अब के पुरुषार्थ में की जा सकती है। जैसे किसी भी धंधे में कोई सीजन चल रहा हो, सीजन में जो वैल्यू है मेहनत की वो सीजन के बाद नहीं। भले कपड़े का धंधा सारे साल चलता है लेकिन जब उसका सीजन चल रहा हो, शादियों का सीजन चल रहा हो और कोई सीजन चल रहा हो, कपड़ा बहुत खरीदा जा रहा हो, तब उसका ज्यादा महत्व है। तो हम सब भी इस समय के सीजन को भी, माया के सीजन को भी, अपनी पुरुषार्थ की सूक्ष्मता को भी बहुत अच्छी तरह समझ लें, हमें क्या करना चाहिए। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि क्या करना चाहिए, यह छुपी है किसी से, हमारा लक्ष्य हम सब के सामने स्पष्ट है। बात केवल इतनी है, हम जो कुछ आपको कह सकते हैं अपने अनुभवों से कि उसी पुरुषार्थ को जो हम करना चाहते हैं और सहज ढंग से कैसे किया जा सकता है। लक्ष्य तो वही है, पुरुषार्थ भी वही है, लेकिन उसमें सरलता कैसे लाई जाए ताकि जो योग कठिन है वो सरल हो जाए, जो कुछ धारणाएं हमारे लिए कठिन साबित हो रही हैं वो सरल हो जाए, जो परिवारों में और संबंधों में अनावश्यक रूप से डिस्टरबेंस चलता है उससे हम मुक्त हो जाए, या कुछ ऐसी समस्याएं जिनको हमने स्वयं पैदा कर लिया है, जिनका हम स्वयं आह्वान कर लेते हैं, जो हम अपनी कमजोरियों से स्वयं बढ़ा लेते हैं, उनसे भी हम मुक्त हो जाएं। बस यही हमें सीखना है। संगम युग पर हम सबको ये सीखना है कि इस जीवन को सरल से सरल कैसे बनाया जाए, लौकिक भी और अलौकिक भी। जब हम अलौकिक की बात करते हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि लौकिक पर ध्यान न दिया जाए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि लौकिक आप बिल्कुल छोड़ दें, केयरलेस हो जाएं। आपके बच्चे हैं, उनके प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें ही नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य के सामने एक विशेष कर्तव्य भी है, हर एक के पास एक कर्तव्य है, और जब मनुष्य को कर्तव्य बुलाता है तब उसको जाना ही पड़ता है। नियम भी तोड़ने पड़ते हैं जब कर्तव्य बुलाता है। जब कर्तव्य बुलाता है तो अपनी समस्याओं को भी पीछे रखना होता है। कर्तव्य पालन मनुष्य की पहली जिम्मेदारी है। तो कर्तव्यों को भी करना है, लेकिन कैसे जीवन को सरल कर दिया जाए सरल भी हो और ये सब समस्याएं जो आज समाज में बढ़ रही हैं, समाज में बढ़ती हुई समस्याओं में सबसे विकराल रूप है किसी भी मनुष्य के लिए, अगर उसके अपने परिवार में पारिवारिक समस्याएं हों, अगर परिवार समस्याओं में उलझा हुआ है तो पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं हो सकता। शुरुआत हरेक को यहीं से करनी है कि अपना पारिवारिक जीवन समस्याओं से मुक्त रहे, यही समझदारी की आवश्यकता है। इसे बुद्धिमानी कहते हैं कि परिवार की सभी समस्याओं को, क्या क्या समस्याएं होती हैं आप सब मेरे से ज्यादा जानते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, एक कहता है शादी करें, पहले से तो ज्ञान में चल रही थी कन्या, कल कहने लगी शादी करनी है, माँ बाप चिंतित हो गए। किसी की कन्या सेंटर पे रहती है, उसको वहां डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, माँ बाप बहुत परेशान है, क्या करें अब इनके लिए। किसी को धंधों में कोई कष्ट हो रहा है, किसी की आपस में नहीं बनती है, स्त्री पुरुष हैं दोनों के संस्कार विचार अलग अलग, रात दिन खेचातान है, कहीं बाप और बेटे की नहीं बन रही है, ये है पारिवारिक सबसे बड़ी समस्याएं जो मनुष्य को नष्ट कर डालती हैं। क्योंकि अगर उसके घर में ही परेशानी हो तो उसको बाहर की समस्याओं से, माया से लड़ना बहुत कठिन होता है, और घर किसी का सुंदर हो तो बाहर की समस्याओं से लड़कर मनुष्य घर में तो आकर चैन की सांस ले सकता है ना, पर जब वो घर में आए तो वहां उसे समस्याओं की अग्नि जलती हुई नजर आए, किसी का मुंह दक्षिण की तरफ हो, किसी का उत्तर की तरफ, तो क्या होगा, टेंशन इतनी हो जाएगी कि बाहर की समस्या या जिसे हम माया कहते हैं उससे लड़ने का बल ही खत्म हो जाएगा। क्या किया जाए जो ये समस्याएं बढ़े नहीं? एक बहुत सरल सी बात, अनुभवों की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जितने भी परिवार ज्ञान में चलते हैं बाबा के पास, उन सभी परिवारों का अगर एनालिसिस किया जाए तो सार रूप में उत्तर मिल जाएगा, जिन माँ बाप की स्थिति बहुत अच्छी है उनके बच्चे, उनके पारिवारिक जीवन बिल्कुल सुखद हैं। सार है ये। लेकिन अगर माँ बाप को क्रोध आता है, अगर उनकी प्योरिटी कमजोर है, अगर उनके पास स्वमान नहीं है, तो बच्चे जरूर गलत राह पकड़ लेंगे, आप उन्हें डांटेंगे, टेंशन घर में पैदा होगा। मैंने आज तक बहुतों को ये राय दी और बहुतों ने करके देखी कि माँ बाप अपनी स्थिति को ठीक करें और देखो बच्चे किस तरह आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, किस तरह सब समस्याएं घर की समाप्त होती हैं। क्योंकि हम सबको इस बात का बहुत अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह, कि हमारा योग, हमारी प्योरिटी, हमारी स्थिति सबसे बड़ी शक्ति है, इसके सामने संसार की कोई शक्ति कहीं नहीं ठहर सकती। परंतु तब जब हम योग करते हों, केवल हमने योग सीख लिया तो हमारे पास योग की शक्ति नहीं आ जाएगी, हम योग करते हों, हम अपने अच्छे स्वमान में रहते हों, हमने अपने विचारों को जरा सुंदर बनाया हो, थोड़ा परिवर्तन किया होगा, तो उसका प्रभाव हमारा जो संसार है अपना लौकिक, उस पर अवश्य दिखाई देगा। एक कुमार का उदाहरण ले दीजिए आप, हमने अनेक कुमारों की स्थिति देखी, जिन कुमारों की अच्छी स्थिति है, केवल एक कुमार की जो छोटा है घर में, उसकी स्थिति से भी उसके अनेक परिवार ज्ञान में चल रहे हैं। एक कन्या है जिसकी स्थिति बहुत अच्छी है, उनके अनेक परिवार ज्ञान में चल रहे हैं। और एक दूसरा कुमार है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसको अपने घर में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एक कन्या है जिसकी अपनी स्थिति अच्छी नहीं, उसको स्वयं को ज्ञान में चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये संघर्ष हमारी अपनी कमजोरी के द्वारा किया गया आह्वान है, ये हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए। संघर्ष कहीं नहीं है, हमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, हमारी स्थिति ठीक, हमारा संसार ठीक। अब ये स्लोगन रखने अपने जीवन के लिए, हमारी स्थिति ठीक, हमारे जो चारों ओर हमारा संसार है, परिवार है, वो बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। हमें इस बात का बहुत कम पता रहता है कि हमसे कहीं ज्यादा शिव बाबा की शक्तियां हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। वो हमारी अनेक समस्याओं को स्वतः ही हल करता रहता है। तो इस तरह अपने को समझदारी पूर्वक आगे बढ़ाएं। अगर स्वयं की स्थिति कमजोर हो गई तो समस्याओं में उलझ जाएंगे। और स्थिति को अच्छा बनाने के लिए मैं केवल 3 राय आपको दूंगा। इस बार की अव्यक्त मूल्य के आधार पर पहली राय, क्योंकि हम सब तपस्या के मार्ग में हैं, तो हरेक को अपनी दिनचर्या से 3 बार केवल 10-10 मिनट निकालने चाहिए। आप निश्चित कर लो समय 10 से 15 मिनट तक, मॉर्निंग में एक, एक शाम को, एक बीच में, कोई भी समय आपके कार्यों के अनुसार। और 10-15 मिनट एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाएं रोज। जो पुरुषार्थी ये मेहनत केवल 3 मास कर ले उसका योग सहज हो जाएगा। केवल 3 मास। पहले आपको एकाग्रता मुश्किल लगेगी, आप उठ न जाएं, बैठें 10-15 मिनट, पुरुषार्थ करें, बार बार कोशिश करें अपनी बुद्धि को स्थिर करने की। 2-4 दिन में स्थिर होने लगेगी। 3 बार रोज करेंगे आप पाएंगे 3 दिन के बाद ही आपकी बुद्धि स्थिर होने लगी और योग सरल हो जाएगा। एकाग्रता पर बाबा की मुरली चल चुकी है, बहुत महत्व है एकाग्रता का। जब हमारे संकल्प शांत हो जाते हैं तो संकल्पों के वाइब्रेशंस में इतनी शक्ति होती है वो हमारी सभी समस्याओं को नष्ट कर देती है। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है हमारे संकल्पों की एकाग्रता के पीछे। संकल्प जितने कम उतनी ही संकल्प शक्ति ज्यादा, वाइब्रेशंस पावरफुल, उतनी समस्याएं कम। लौकिक कार्यों में भी समस्याएं कम होंगी, आने वाली समस्याएं भी नष्ट हो जाएंगी। और जितने संकल्प ज्यादा हैं, जितनी मन में उलझन ज्यादा है, उतने वाइब्रेशंस कमजोर हैं, उतनी समस्याएं बढ़ती रहती हैं। दूसरी चीज जो हमेशा आपने सुना होगा, मेरे जीवन का ये मुख्य टॉपिक है प्रैक्टिकल, जिसपे मैंने पूरे 30 साल पहले दिन से अच्छे अभ्यास किए हैं, स्वमान, हायर कॉन्शियसनेस, बहुत ऊंची स्मृति, अर्थात मैं कौन, बहुत ऊंचा नशा, ये योग ही है। कई बाबा के बच्चे अभी योग और स्वमान के संबंध को समझ नहीं रहे। वो सोचते हैं स्वमान में रहना, इससे क्या विक्रम विनाश होंगे। प्रश्न पूछते रहते हैं, क्या ये भी योग है? यही योग है। बाबा के महावाक्यों का आप अध्ययन करें, स्वमान में स्थित होना ही संपूर्णता है, स्वमान में स्थित हो जाना ही योग है। स्वमान ही हमारे मूल संस्कारों को इमर्ज कराता है, स्वमान ही हमारी कमजोरियों को बाहर निकाल फेंकता है। स्वमान तो एक बहुत सुंदर प्रोसेस है, बहुत सुंदर एक तरीका है जिससे आत्मा स्वच्छ होती है। स्वमान का रोज अभ्यास करें, ईश्वरीय नशा। मैंने बहुत बार एक बात पर्सनली भी और जनरल रूप से भी बहुत भाई बहनों को सिखाई है। आप अपने ऑफिस में जाते हैं, 1 मिनट रोज इस नशे में वहां बैठें, मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का देवता हूं, मुझे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं पवित्रता के। रोज 1 मिनट करें, आप देखो इफेक्ट क्या होता है 15 दिन में ही। आप अपने घर में रोज 5 मिनट इस नशे के साथ बैठें, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, भक्ति में मेरी याद से ही भक्तों के विघ्न नष्ट हो जाते हैं, मुझसे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं चारों ओर, आप पाएंगे आपका घर विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। ये वो एक्सपेरिमेंट हैं जो अभी से हमें करने चाहिए। आने वाले समय में आत्माएं हमसे यही चीज मांगेंगी। आप ये छोटी-छोटी चीजें अपने घरों में रोज करो, घरों के वातावरण को, घरों को निर्विघ्न बनाने के लिए। क्योंकि नहीं तो आजकल बिना मतलब की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। कैसी समस्याएं हैं? नींद ना आना, कभी किसी बाहर की इविल सोल का प्रभाव, ये दो समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही। अच्छे अच्छे लोग अनिद्रा के शिकार होते जा रहे हैं और उसके बाद दवाइयां लेते हैं बहुत, और उसके बाद ब्रेन कमजोर होता है और समस्याएं बढ़ती हैं, मेमोरी वीक होती है। तीसरी चीज मुरलियों का अध्ययन। भंडार है हमारे पास, ज्ञान का भंडार। आपने अभी अभी स्नेह पर बाबा की मुरली सुनी, कितने अच्छे बोल थे। स्नेह ही योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। कितना अच्छा स्लोगन है, स्नेह ही योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। कैसी सुंदर परिभाषा है बाबा की। तो ये हमें याद रहे तब तो चिंतन होगा, जो आज बाबा ने कहा फ्रेश रहने का तरीका चिंतन। हर एक को बिना किसी बहाने के कि टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं, टाइम सबके पास है, लक्ष्य होना चाहिए रोज कम से कम साकार मुरली सेंटर में सुनते हैं, अव्यक्त मुरली स्वयं पढ़ें। ये तीन बातें हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार बन सकती हैं। अब समय है, समय के अनुसार हमें अपने योग को सरल बनाने के लिए इस ऊंची स्मृति का बार बार अभ्यास करना चाहिए। अब ऊंची स्मृतियां ले लीजिए, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, एक स्मृति है ये, रोज हम सब ने सुनी है बाबा की मुरलियों में, हम सबके मुख पर है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं। लेकिन इसका कम से कम एक हफ्ता अभ्यास किया जाए, अपने को बार बार याद दिलाया जाए कि हे आत्मा तुझे विश्व का कल्याण करना है, इसलिए अपने संकल्पों को चेक कर ले कि तेरे अंदर कोई संकल्प किसी के लिए अकल्याण का तो नहीं चलता। बस इतनी ट्रेनिंग आपको देंगे, आप अपने को देंगे और पाएंगे किस तरह संकल्पों में परिवर्तन होता है, कि जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं क्या उनके मन में किसी के लिए घृणा भाव हो सकता है। अपने को पढ़ाते चलें, ये सेल्फ को देने वाली ट्रेनिंग है, ये कोई और नहीं देगा किसी को, हमें स्वयं को स्वयं देनी होती है। इस एक एक्सपेरिमेंट से अपने संकल्पों को ठीक किया जा सकता है। देखिए आप एक हफ्ता अगर चेक कर लें कि मेरे मन में उठने वाला कोई भी संकल्प कहीं अकल्याणकारी तो नहीं है, एक हफ्ते में संकल्प ठीक लाइन पर आ जाएंगे। इस तरह के अभ्यास रोज आवश्यक हैं। जिनको कार्य करना है महादानी और वरदानी स्थिति पर, जो बाबा ने इस साल के लिए हमें काम दिया है, करना है ये काम। ये काम ऐसे हैं जिसमें श्रेष्ठ योग स्वतः ही समा जाता है, योग के लिए जिसमें खींचातान करने की जरूरत नहीं है। बाबा का अभी अभी महावाक्य था कि जैसे सूर्य ऊपर है इसलिए चारों ओर प्रकाश फैलाता है, लाइट हीट फैलती है, तुम भी ऊपर रहो तो चारों ओर लाइट माइट फैले, ये है महादान। जस्ट विचार करो कि बाबा के पास ऊपर हैं और वहां से लाइट माइट फैला रहे हैं, तो लेना और देना साथ साथ हो जाएगा। पांच मिनट करो, टाइम फिक्स कर लो कि ये टाइम मेरी दिनचर्या में बचता है, इसमें एक पांच मिनट के लिए, घंटों नहीं करें, घंटा संकल्प करते भारीपन आ जाता है। हम केवल पांच मिनट कह रहे हैं, भाई ऑफिस जा रहे हैं, पांच मिनट ये प्रयोग करके चलें। ऑफिस से आए हैं, पांच मिनट एक दूसरा प्रयोग कर लेते हैं, अब थोड़ा सा समय बचा है, तीन मिनट के लिए एक तीसरा प्रयोग कर लेते हैं। तीन या पांच प्रयोग महादान के रोज आप अपने लिए कर लें। उदाहरण के लिए एक बहुत सुंदर प्रयोग, आज ही मुझे ख्याल आया, एक भाई बात कर रहा था विदेश का, महादान कैसे करें। आजकल दुनिया में एक नई बीमारी बहुत बढ़ गई है, कौन सी, कैंसर। जहां तहां कैंसर की आवाज सुनने में आती है, किसी विदेशी ने बताया उनके देश में हर दो व्यक्ति के बाद तीसरा व्यक्ति कैंसर का शिकार हो गया है। देखिए कितनी बड़ी बीमारी है और जो मृत्यु का संदेश लेकर आती है। अभी अभी एक बहन का समाचार मिला, कोई अपनी बहन जिसको यहाँ कमर से नीचे का सारा हिस्सा कैंसर से ग्रस्त हो गया है, कोई डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने मृत्यु की डेट दे दी है कि अब इसके अलावा मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब आप उस आत्मा की स्थिति देखिए जिसको मरने की डेट मिली है कि 3 मास के बाद तुम मर जाओगे। अगर उसकी स्थिति बहुत अच्छी है तो वो इस 3 मास को सुखद बना सकती है, लेकिन साथ में पेन होना, साथ में चिंताएं होना, साथ में उसका खाली है तो पूरा जीवन याद आएगा उसको, पास्ट का प्रभाव होना, उसके मन में टेंशन भी कर सकता है, कोई उसे पूछेगा नहीं, किसी को भी उसके पास जाने की मनाही है, ये बात भी उसे परेशान कर सकती है। कितनी बड़ी सजा हो गई। एक प्रयोग कर लें आप 5 मिनट रोज कि संसार में जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं सबको 5 मिनट के लिए पवित्र वाइब्रेशंस देना। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस, हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशंस शरीर की बीमारियों को नष्ट करने वाले हैं, प्रकृति को पवित्र करने वाले हैं। आप एक टाइम निश्चित कर लें, आपको बहुत मजा आएगा कि आपके सामने हजारों लाखों कैंसर पेशेंट हैं और आप बाबा से पवित्रता की किरणें लेकर पवित्रता के वाइब्रेशन सबको फैला रहे हैं। 5 मिनट चुटकी बजाते जैसे बीत जाएंगे। ऐसे ही आप भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न तरह के संकल्प रख सकते हैं। दूसरी बार आप 5 मिनट कर लें कि आज संसार में बहुत सारे लोग, भारत में तो फिर भी कम, विदेशों में बहुत ज्यादा अनिद्रा के शिकार, टेंशन के शिकार, क्या जितनी भी टेंशन से ग्रस्त आत्माएं हैं उन सबको शांति के वाइब्रेशंस देने हैं ताकि वो सुख से सो सकें। सोते समय आप ये अभ्यास कर लो, 5-7 मिनट टेंशन वाली आत्माओं को शांति के वाइब्रेशंस दो। आज संसार में तीसरा प्रयोग, बहुत सारी कमजोर आत्माएं हैं जिनका जीवन समस्याओं से ग्रस्त है, हर व्यक्ति समस्याओं से पीड़ित है। आप 5 मिनट ऐसी आत्माओं को इमर्ज करो कि जिनके सामने ये समस्याएं हैं उनको 5 मिनट शक्तियों का दान देंगे। देखो कितना अच्छा योग होगा आपका, कितने अच्छे अनुभव होंगे, सेवा भी होगी, महादान भी होगा और साथ साथ योग भी होगा। 3 टाइम कम से कम ऐसे अभ्यास, बड़ा सुख मिलेगा करने वाले को, बहुत सुख मिलता है और ये सुख की प्राप्ति ही इस सेवा की सफलता का चिन्ह है। कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि कैसे हम समझे हमारे वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाला सुख इसकी सफलता का सबसे बड़ा लक्षण है। होगा ये 3 अभ्यास, केवल 15 मिनट की बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत मजा आएगा इसमें। इस तरह योग को सरल बनाया जाए। बाबा ने योग को सरल बनाने के लिए पूरी मुरली सुना दी है स्नेह प्यार पर, और यह भी कह दिया कि प्यार में डुबकी तो बहुत लगाते हैं लेकिन फिर ऊपर आ जाते हैं तो माया देख लेती है। अर्थात प्यार का 1-2 संकल्प कर लेते हैं कि बाबा बहुत मीठा है, कितना प्यारा है बाबा, बस, और फिर लहर दूसरी ओर चली जाती है। हर एक को बाबा के प्रति प्यार पैदा करने वाले संकल्प रचने चाहिए। रचेंगे संकल्प तो ही लंबा समय मगन स्थिति आएगी। अब वो संकल्प क्या हो सकते हैं? एक संकल्प मेरे अपने जीवन के अनुभव, जब मैं समर्पित होके यज्ञ में आया 25 साल पहले, पहला दूसरा तीसरा साल बहुत प्यार में बीता। क्या संकल्प होते थे? एक संकल्प, बाबा ने मेरे लिए क्या क्या किया, क्योंकि प्यार कोई बनावटी चीज तो नहीं है ना, जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसी के लिए तो प्यार उमड़ता है। ऐसे ही हम कहते रहे बाबा तू बहुत प्यारा है, क्योंकि हमने सुना है वो बहुत प्यारा है, इससे तो कोई मगन स्थिति आने वाली नहीं है। लेकिन उसने मेरे लिए क्या क्या किया है, सबके लिए बहुत कुछ किया, ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं जो ये नहीं जानता कि उसके लिए क्या क्या किया है। लिखो आप, मैं लिखा करता था, दूसरा संकल्प में लिखा करता था, अगर बाबा न मिलता तो बहुत मजा आता था मुझे, कि देखो मेरी इस जीवन की यात्रा पर भगवान दोस्त के रूप में मिल गया, अगर ये न मिलता तो क्या होता, कितना सुंदर और सर्वश्रेष्ठ सहारा मिल गया हमारे लिए, कितना बड़ा सहारा है कि हम अपने मन की बात उसे कह सकते हैं, अधिकार है, हम उससे मदद भले ही मांगना हमें नहीं है लेकिन समय पर अधिकार से मांग भी लेते हैं कि बाबा यहां तो मदद करनी ही पड़ेगी, और वो करता है। कितना हम उसके समीप आ गए, कहां थे प्यार के आप 10-20 पॉइंट इकट्ठे कर लें, कैसे भटक रहे थे, कैसे ठिकाना मिल गया, कितना बड़ा एहसान है उसका हमारे ऊपर। किसी किसी के जीवन की अनेक समस्याएं उसने समाप्त कर दी है, किसी को बिल्कुल ही नया जीवन दिया है, किसी का जीवन बीमारियों से मुक्त कर दिया है, किसी के पास कई कलाएं दी हैं। हम में से बहुतों के अनुभव हैं, मेरे अपने अनुभव हैं, जब मैं यहां आया तो शायद मेरे पास कोई विशेष कला नहीं थी, और आज बहुत सी कलाएं हैं, मुझे इसका कोई अहम नहीं होता कभी, क्योंकि मुझे पक्का पक्का पता है, वो सब घटनाएं याद हैं जब बाबा ने मुझे भिन्न भिन्न कलाएं दी हैं, मेरा उसमें कुछ नहीं है। तो बड़ा प्यार पैदा होता है बाबा के लिए कि जिसने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया उसके प्रति कितना प्यार हो हमारे मन में, ऐसे संकल्प आप क्रिएट करें, रचें। बड़े बड़े संकल्प भी हैं, बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारे लिए राज भाग लेकर आया हूं, ऐसा कोई होगा दुनिया में हाथ में थाली लेकर आया हो कि लो तिलक तुम्हें ही देना है, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज दिलाने आया हूं। ये पॉइंट सब मुरलियों में, रोज की मुरलियों में आते हैं, बाबा की साकार की मुरलियों में बहुत बार संपूर्ण प्यार छलकता है उसके महावाक्यों में, वो हम पकड़ लें, उस पर चिंतन करके हम मगन हो सकते हैं। इस तरह योग को सरल बनाने के लिए मगन होना भी सीखें। इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, जब कोई भी एकाग्रता की बात सुनते हैं, बाबा भी सुनाते हैं, हम सब भी क्लासेज में एकाग्रता की बात सुनाते हैं, तो एकाग्रता का एक ही अर्थ सब समझते हैं, एकाग्र अर्थात संकल्पों को बंद करके बाबा पर स्थिर हो जाना, ये तो उसका अर्थ है ही, लेकिन एक दूसरा भी अर्थ है एकाग्रता का, जिस तरह के संकल्प हम चलाना चाहें उसी तरह के चलें, उससे बाहर न जाएं, ये भी एकाग्रता है। हम प्यार के संकल्प बाबा के लिए चला रहे हैं तो प्यार के ही चलाते रहें 15 मिनट, ये भी एकाग्रता है। इसमें भी उतनी शक्ति है जितनी शक्ति संकल्पों को बंद करने में है, इसलिए ये दोनों स्वरूप हैं, इसमें किसी को डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि बहुत भाई बहनों के पास जब एकाग्रता वो करते हैं तो एक अनुभव होता है, सिर भारी, टेंशन जैसी, भ्रकुटी में कुछ विशेष फीलिंग, कोई कोई बोर होते हैं, क्योंकि ऐसी एकाग्रता के लिए जिसमें हम संकल्पों को बंद करना चाहते हैं हमारे मस्तिष्क का बहुत पावरफुल होना आवश्यक है। अगर मस्तिष्क पावरफुल नहीं है तो एकाग्रता टेंशन पैदा कर सकती है, सिर दर्द पैदा कर सकती है, इसलिए जिनको ऐसा अनुभव हो वो एकाग्रता में संकल्पों को बंद करने की कोशिश न करें, एक ही तरह के संकल्प चलाने का अभ्यास करें, एक ही तरह की फीलिंग्स, ये एकाग्रता का बहुत सुंदर अभ्यास है। और क्या करना है इस थोड़े समय में, मेरे अपने जीवन का अनुभव, मुझे 25 साल पूरे होके 26वां साल मधुबन में शुरू हुआ, मैंने पहले से ही एक लक्ष्य रखा है। हमारे पास बहुत बड़ा संगठन है, शायद ही संसार में कहीं ऐसा बड़ा संगठन हो। ये बात सुन के किसी को अतिशयोक्ति लगेगी, संसार में तो बड़े बड़े संगठन होते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये यज्ञ ऐसा है कि इसमें अगर आज 200 भाई बहने समर्पित हैं तो 200 के 200 मालिक हैं, कोई भी नौकर नहीं, कोई भी कार्यकर्ता नहीं, सब मालिक हैं, सबको अधिकार है पूरा। ऐसा संगठन संसार में और कहीं नहीं है। लाखों लोग कहीं हो सकते हैं लेकिन सभी मालिक हों, ये नहीं होता है। जहां 200 लोग मालिक हों और वो संगठन निर्विघ्न चले, जहां इतने लोग अधिकारी हों, वहां कोई आत्मा अपने को निसंकल्प रखे, ये बहुत बड़ी समझदारी है। मैंने शुरू से ही एक लक्ष्य बना लिया था कि कहीं भी अपने को उलझाना नहीं है। चलो इसी संकल्प के साथ सभी संकल्प ले लेंगे। ये युग का ये समय कहीं भी उलझन में न बीते। जो अपने को मुक्त कर सकते हैं, जितने तक उन्हें मुक्त कर लेना चाहिए। कई मनुष्यों को स्वयं को उलझाने का संस्कार होता है, उसे छोड़ देना है। कई बहुत उलझते हैं और बहुत उलझाते हैं। ऐसा अगर किसी के पास संस्कार है तो ये संगम युग के लिए श्राप है। मैंने आपको अपनी बात बताई, इसलिए बता रहा हूं ये बात कि इस जीवन में बहुत आनंद है अगर हम उलझन से मुक्त रहें। और मुझे ये पूरी संतुष्टि है कि 25 साल मेरे पास कोई एक भी बात नहीं होगी जिसमें मैं उलझा हूं, जबकि मेरे पास काम भी अच्छे हैं, जिम्मेदारी भी है, और मैं एक ऐसी रेस में चला हूं जिस रेस में आप जानते हो संगठन में ईर्ष्या द्वेष भी हो जाती है, परंतु मैं अपने को इतना सरल रख के चला कि दूसरों को भी ईर्ष्या द्वेष का कम से कम मौका मिले। मुझे कहा गया क्लास करा दो, हाँ जी, कह के कैंसिल कर दिया तो भी हाँ जी, किसी और को दे दिया तो भी हाँ जी, मुझे नहीं दिया गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये पक्का पता है कि जिसको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए ये सब साधन आगे बढ़ने के लिए नहीं है। आगे कोई भी आत्मा बढ़ती है अपनी सूक्ष्म स्थितियों के द्वारा, और जिसके पास जो कलाएं या सूक्ष्म स्थिति या सूक्ष्म शक्तियां हैं उनका प्रयोग सेवा में होता ही है, क्योंकि वो उसने ही दी हैं जिसको सेवा करानी है। बहुत लोग सेवाओं में बहुत उलझते हैं। कई लोगों के जीवन को देखकर बड़ा रहम आता है, सबको आएगा कि वो लौकिक में उलझे हुए नहीं हैं, लेकिन अलौकिक में ज्यादा उलझ गए हैं। उनसे कोई पूछे कि तुम्हारा क्या है इधर काम, शिव बाबा का करने वाला वो और परेशान हम, इसको बुद्धिमानी कहते हैं। बहुत लोग देखे जाते हैं, उन्हें शायद पता ही नहीं कि ये सब काम ऊपर की शक्तियों से हो रहा है। तुम कौन होते हो करने वाले? अगर वो अपना हाथ हटा ले सिर से तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जिस आत्मा ने ये समझ लिया है अनुभवों से कि ये सब तो ईश्वरीय शक्तियों से हो रहा है, आप महाभारत का अध्ययन करें बहुत अच्छी तरह, श्री कृष्ण के पार्ट को अगर उसमें देखें जो भगवान के रूप में वहां दिखाया है, तो आपको पता चल जाएगा कि पांडवों के द्वारा जो कुछ हो रहा था वो ईश्वरीय शक्ति करा रही थी, उनमें कुछ ताकत नहीं थी। और अंत में दिखाया जब श्री कृष्ण चले गए तो पांडवों के पास कुछ नहीं था, युधिष्ठिर में धर्म का बल नहीं, भीम जो महाबली था उसमें कोई बल नहीं, अर्जुन के धनुष में कोई ताकत नहीं, सब समाप्त हो गया एक सेकंड में। हम सबके पास भी जो पावर है वो ऊपर से मिली हुई पावर है, अगर वो हाथ खींच ले अपना तो हमें पता चलेगा तुम में कुछ नहीं है। हमें किसका गर्व करना चाहिए? कोई मार्जिन नहीं है गर्व करने की। जिसको गर्व हुआ, जिसको अहंकार हुआ, वो सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। इसलिए कहीं भी स्वयं को उलझाया न जाए। मैंने शुरू शुरू में ही बाबा का एक महावाक्य सुना था, मुझे बहुत काम आया। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन जो बच्चे वो जिम्मेदारी समर्पित करके कार्य करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बाबा स्वयं पूरी करते हैं। देते भी बाबा हैं, लेकिन जो समर्पित कर देते हैं वापिस, मतलब अपने को निमित्त समझ के जिम्मेदारी संभालते हैं, उनकी जिम्मेदारी बाबा स्वयं पूर्ण करते हैं। दूसरा महावाक्य आया तभी तभी, देखो बाप जो मालिक है, संसार को रचने का, बदलने का जिम्मेदार है, वो तो अपने को निमित्त समझता है, बिल्कुल हल्का रहता है, बिल्कुल हल्का। और जो बच्चे निमित्त हैं, वो अपने को मालिक समझ के भारी हो रहे हैं। होना जिम्मेदार को भारी चाहिए, हो रहे हैं वो भारी जो निमित्त हैं। ये कुछ महावाक्य हैं बाबा के, ऐसे ही बहुत सारे, जिनको अगर हम अपने चिंतन में लाएं, अपने अभ्यास में लाएं, तो लौकिक जीवन भी बिल्कुल सरल हो सकता है। आप देकर देखो अपने बोझ बाबा को, चिंताएं सौंप कर देखो बाबा को, क्या रिजल्ट निकलता है। भगवान ने स्वयं कहा है, सब कुछ मुझे दे दो। हम देकर तो देखें कि वो हमारे कार्य किस तरह पूरे करता है, कैसे संभालता है सबको। रही बात लौकिक और समस्याओं की, अब सभी पुरुषार्थियों को कर्मों की गहन गति के और अच्छी तरह ज्ञाता बनना चाहिए। जितने कर्मों की गति के ज्ञाता बनेंगे, उतने निसंकल्प रहेंगे। कर्मों की गति के ज्ञाता, जिसके बाद हमारी स्थिति आती है साक्षीपन की, जो बहुत सुंदर स्थिति है, बड़ी मीठी, बहुत स्वीट। साक्षीपन क्या है कि इस संसार के नाटक में सभी का पार्ट देखते हुए कोई क्वेश्चन न उठे, कोई प्रश्न मन में न उठे, ये क्यों हो रहा है। प्रश्न तो बहुत उठते हैं मनुष्य के मन में, लेकिन जिसने कर्मों की गति को गहराई से जान लिया, उनके मन में कुछ भी देखकर प्रश्न नहीं उठते। अभी लातूर में भूकंप आया, बहुत सारे लोग मर गए, किसी ने कहा 50,000 मरे, किसी ने कहा 2,00,000 मरे, बहुत मरे। मैं उधर गया, मेरे से लोग प्रश्न पूछते, अपने भाई बहने, कि क्या इसी क्षेत्र के लोगों ने पाप ज्यादा किया था, जब प्रकृति ने इनको नष्ट कर दिया, क्या था ये सब। तो पाप उस क्षेत्र के लोगों ने नहीं, पाप तो सारे क्षेत्र के लोगों का बहुत है। किसी को प्रकृति पहले, किसी को बाद में, नष्ट तो सबको करेगी। हम सब ज्ञान के द्वारा भी जानते हैं कि इस शरीर सहित कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, हमें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा अपना सब कुछ नष्ट होते हुए। अब हमें सोच लेना है, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जब हम आए तो भी कुछ नहीं लाए थे शरीर सहित, और जब जाएंगे तो जिससे लिया उसको ही देके जाएंगे, न हमारा है न हमारे साथ जाएगा। ज्ञान से इतना तो हम सब जानते हैं। अब है कि हम अपने को तैयार कर रहे हैं कि अपनी आंखों से जिसे हम अपना कहते हैं, उसे हम नष्ट होता हुआ देखकर भी अचल रह पाए, क्योंकि उसको हम टाल नहीं सकेंगे, कोई तरीका नहीं। हम छुपा दें, बचा लें, कोई तरीका होगा। हम सबको इतना ज्ञान है। अब इस एक बात को सामने रखते हुए हमें लक्ष्य बनाना है कि अपनी स्थिति ऐसी अचल अडोल हो जाए, इसको ही साक्षीपन कहते हैं, जिसका अभ्यास अभी से जरूरी है। कि जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना है। ये क्यों हो रहा है, मेरा ही सब कुछ क्यों नष्ट हो गया, और तो सब सुखी हैं। देखो ज्ञानियों को परेशानी हो रही, अज्ञानी भी सुखी हैं, ये सब प्रश्न खत्म हो जाएं, इन सब का उत्तर हो हमारे पास। प्रश्न खत्म करने का तरीका है उनके उत्तर को जानना। बिना उत्तर जाने प्रश्न समाप्त नहीं हो सकते। हम उत्तर जान ले, हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास हो, ये इसलिए हो रहा है। तो कर्मों की विकर्मों की गति बहुत गहरी है, हमें बिल्कुल पता नहीं हमने कब और किस आत्मा के साथ क्या विकर्म के बीज बोए हैं, कुछ पता नहीं हमें। 63 जन्मों में न जाने किसके साथ कौन से विकर्मों के बीज बहुत गहराई तक डाले हुए हैं, और वो कब हमारे पास आ जाए हिसाब किताब लेने के लिए। हम नहीं कह सकते तुम न आओ, बीज हमने बोए हुए हैं। कर्मों की गति को जानकर निसंकल्प होना, इसकी अब बहुत आवश्यकता है। नहीं तो किसी को प्रश्न उठता है, ये भाई ये बहन 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी ऐसे क्यों? देखो ये भाई इतने समय से चल रहा है, अब तक भी क्रोध, तो हमारा क्या होगा 2-4 साल में? इसने 50 साल योग लगाया है, इसके भी बुरे संस्कार नहीं बदले, हम क्या करेंगे? ये प्रश्न उठते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थ की गति को, कर्मों की गति को जानते हैं, उनके पास ये प्रश्न नहीं है। क्यों? चाहे किसी ने 100 साल योग लगाया हो, 1000 साल लगाया हो, अगर साथ साथ श्रेष्ठ कर्मों पर ध्यान नहीं दिया तो योग की शक्ति रोज होने वाले विकर्मों में नष्ट हो जाती है। योग लगाएंगे 1-2 घंटा और विकर्म हो जाएंगे रोज 8-10, तो विकर्मों का बोझ कहीं कहीं ज्यादा हो जाता है योग के बल की अपेक्षा। इसलिए कोई 20 साल से योग लगा रहा उसका जीवन बदल ही जाए, ये संभव नहीं, जरूरी नहीं है। योग और पुरुषार्थ कितना यथार्थ रीति से हुआ है, योग और पुरुषार्थ के साथ श्रेष्ठ कर्मों पर कितना ध्यान दिया है, सुख का लेन देन कितना किया है, वाचा के द्वारा होने वाले विकर्मों से कितना मुक्त रहे हैं, प्योरिटी के पुण्य कितने किए हैं, इस पर है सारा खाता। कोई लोग, अभी अभी कोई भाई प्रश्न पूछ रहा था कल ही, कि बहुत जो अच्छी आत्माएं हैं वो तो सेवाओं में बहुत बिजी हैं, उनका योग ज्यादा नहीं रहता तो क्या होगा? बड़ा रॉयल प्रश्न था उनका भी। और इसका उत्तर है कि योग तो हमारी एक साधना है, योग साधना का रिजल्ट होना चाहिए हमारे जीवन की दिव्यता। अगर हमने अपने जीवन को दिव्य बनाया है तो ही हम योगी हैं। अगर हम 8-10 घंटे भी रोज योग कर रहे हो लेकिन जीवन दिव्य नहीं बना तो योग नहीं है। इसलिए जो महान आत्माएं, मान लो वो सेवा में बहुत बिजी हो जाते हैं कभी, रोज की बात नहीं कभी, और उनका योग थोड़ा रह जाता है, लेकिन उनके पास सहनशीलता बहुत है, उनकी दृष्टि में रूहानियत है, उनके बोल सदा ही श्रेष्ठ हैं, वो अपने स्वमान में रहते हैं, तो वो योगी हैं। इसलिए केवल योग अभ्यास करने वाले हम न रह जाएं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, जो आज बाबा कह रहे थे, अपने कैरेक्टर को, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाओ। टावर ऑफ सुख में जाना है, स्वर्ग में जाना है, अपने संस्कार और कैरेक्टर अर्थात विचार श्रेष्ठ होने चाहिए, यही योग का प्रत्यक्ष स्वरूप है। क्योंकि ऐसा बहुतों के पास देखा जाता है कि लोग योग करते हैं बहुत जल्दी उठ के, सारा दिन भी मेहनत करते हैं, लेकिन संस्कारों का चिड़चिड़ापन नहीं जाता। तो उसका कारण यही है कि उनका योग भी पूरा नहीं लगता और संस्कार बदलने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम सभी को ये एक महामंत्र समझ लेना चाहिए। ध्यान से आप सुन लें कि योगी आत्माएं जिस चीज को सच्चे दिल से बदलना चाहेंगी वो बदल जाएगा। अगर हमारी कोई चीज बदल नहीं रही है तो हम सच्चे दिल से बदलना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं सबके जीवन को, अपने जीवन को, इस एक सिद्धांत के आधार पर। क्रोध हमारा नहीं छूट रहा है, 10 साल हो गए ज्ञान में चलते। उसका कारण यही है कि हमने उसको छोड़ने के लिए अभी तक सच्चे दिल से गहराई से सोचा नहीं है। हम जब क्रोध आता है तब याद करते हैं, अरे बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करो, ये फिर आ गया, बस इतना ही याद करते हैं और भूल जाते हैं, फिर सोच लेते हैं अब नहीं करेंगे, फिर दोबारा आ जाता है, फिर याद आता है बाबा ने कहा क्रोध नहीं करो, बाबा ने कह दिया इसका मतलब ये थोड़ा ही कि क्रोध चला जाएगा, उसके लिए तो एक विधि अपनानी पड़ेगी ना, उसको छोड़ने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ेगा, उसके कारण ढूंढने पड़ेंगे, अपने को कहीं धैर्यता में लाना पड़ेगा, कहीं शीतल करना पड़ेगा, कहीं अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा, कहीं अपनी जिद को छोड़ना पड़ेगा, तब तो क्रोध छूटेगा ना। तो इस तरह इस ड्रामा को देखते हुए साक्षी भाव बनाने का भी समय है। समय जिस गति से आगे बढ़ रहा है, हायर कॉन्शियसनेस, बहुत ऊंची स्मृति, जैसे हम पूर्वज हैं, ये ऊंची स्मृति है, स्वमान से भी ऊपर की बात, हम विश्व कल्याणकारी हैं, हम इष्ट देव हैं, ये हैं ऊंची स्मृतियां जो जीवन को तत्काल बदलती हैं। इन स्मृतियों में जादू है, योग के साथ ही हैं ये सब। कोई योग लगा रहा हो और श्रेष्ठ स्मृतियां ना हो तो जीवन दिव्य होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसलिए श्रेष्ठ योग के पुरुषार्थ के साथ श्रेष्ठ स्मृतियों का संकल्प, ये केवल संकल्प है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। सवेरे आंख खुलते ही आप सोच लो, मैं इस शरीर में आया हुआ फरिश्ता हूं, केवल सोचो और प्रभाव देखो इस एक संकल्प का पूरे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। संकल्प कर लो, उठते ही अनेक अशांत आत्माएं मुझसे शांति की भीख मांग रही हैं, मैं शांति का अवतार हूं, मुझे शांति देनी है। इसका रिजल्ट देखो, यह है हायर कॉन्शियसनेस, श्रेष्ठ स्मृतियां। ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियों को बढ़ाने का समय है, साक्षी होने का समय है। मैंने एक दो बार क्लास में ये बात सुनाई है, प्रसंग ऐसा ही था कि शिविर में कोई आया और उसका बहुत प्रसन्न था कि भगवान इस ड्रामा को क्यों नहीं बदलता, भाई बार बार वही रिपीट कराता रहता है, बड़ा पार्शियल है। एक को ब्रह्मा का पाठ दिया उसके लिए फिक्स कर दिया, एक को विश्व महाराजन बनाया उसके लिए फिक्स कर दिया, बदलना चाहिए उसे ताकि सबको चांस मिल जाए। अब उसने यहां सबसे ये प्रश्न किए, अब सब अच्छा उत्तर तो देते ही हैं, सबके पास ज्ञान है, पर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। मेरे पास भी आया वो यही प्रश्न लेके कि भगवान इस ड्रामा को क्यों नहीं बदलता। मुझे पता था, बता दिया गया था कि बहुतों ने इसको उत्तर दिए हैं, तो उत्तर तो सब अच्छे ही देते हैं। तो मैंने उसको उत्तर दिया कि वो इसलिए नहीं बदलता क्योंकि उसको ये ड्रामा बहुत प्रिय है। अब जिसको प्रिय हो वो क्यों बदलेगा? आपके घर में प्रिय प्रिय चीजें रखी हो अच्छी, आप उन्हें क्यों बदलेंगे? खराब होगी तब तो बदलेंगे ना। अब ये समझने की बात है कि ये ड्रामा भगवान को क्यों प्रिय है, ये समझने की बात है, क्योंकि वो जानता है कि सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चल रहा है, सुख या दुख, परेशानी या आनंद, वो सब इनके कर्मों का परिणाम है। इसमें शिव बाबा ने कुछ कर दिया है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं कि हर आत्मा ने अपना ड्रामा स्वयं बनाया है, किसी और ने नहीं, हर एक ने अपना ड्रामा स्वयं बनाया हुआ है, इसलिए स्वयं बदल के देख लो। अब इसमें मैंने उसको ये बात बताई और मुझे ये बात उसको बताते ही अपने लिए एक बहुत अच्छी बात मिली पूरे साल के लिए। मैं उसको तो कह दिया, ऐसे मेरे ख्याल में आ गया कि इसको और सब बातें तो बता दी, तो मैंने ये कह दिया, लेकिन मुझे ये बात कहते ही ख्याल में आई कि भगवान को सचमुच ये ड्रामा प्रिय है, ये तो हम जानते हैं, वो इसको देखते हुए कुछ भी सोचता नहीं है। ऐसे ही अगर हमें भी ये ड्रामा प्रिय लगने लगे तो हम बाप समान बन जाएं। तो ये मुझे काम आ गई बात बहुत, कि भगवान को ड्रामा प्रिय है इसलिए वो भगवान है, निश्चिंत, कुछ नहीं सोच रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन खुश है, कौन नाराज है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, उसे पता है ये सब इनके ही कर्मों की चेन है, जो जिसने किया है उस अनुसार भोग रहा है। न्याय इस ड्रामा में ऑटोमेटिक होना है, न्याय की सीढ़ी से कोई उतर नहीं सकता, इसलिए सब कुछ ठीक हो रहा है। बाबा साकार में कहा करते थे कि बाबा का जब कोई बहुत अनन्य बच्चा बीमार होता है, उसे बहुत तकलीफ होती है, तो बाबा को इच्छा होती है कि इसे मदद कर दूं। बिल्कुल जब होमली बात करते थे ना बाबा, लेकिन फिर बाबा सोचता है कि ये तो विधान ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते थे इसे बहुत तकलीफ होती है, खांसी बहुत होती थी बाबा को, तो इसको ठीक कर दूं खांसी। तो बाबा का नहीं, तुम्हें योग बल से ही ठीक करनी है। तो बाबा को प्यार तो है बच्चों से, और वो मदद भी करते हैं, मदद भी करते हैं, बल भी दे देते हैं। बड़ा लंबा कुछ है भाई। पहला चार लक्ष्मी नारायण का जोड़ी हो तो रिमेनिंग चार जोड़ी का, भाई हिंदी लिखनी नहीं आई। इफ डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन 96-2003 बाय ऑल मींस इंक्लूडिंग केमिकल वेपन्स, डज द ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस विद इन 35 ईयर्स, डोंट इट लीव एन इफेक्ट। ये ठीक बात है कि जब न्यूक्लियर वेपन्स छूटेंगे, उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बरसात इस धरती पर होगी, और बरसात का इफेक्ट, न्यूक्लियर वेपन्स का जो इफेक्ट होगा उसको स्वच्छ कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो साथ साथ बारिश का होना और एटम बम आदि का छूटना, इससे बहुत बड़ा डिस्टरबेंस प्रकृति में एक बार होगा और तेजी से बरसात आदि के द्वारा वो न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा। रही बात अश्रत्नों की और चार जोड़ी की, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये प्रश्न ये है कि अश्रतन चार जोड़ी हैं, अश्रत्नों के बारे में जिसने पूछा हो वो पूछ सकते हैं क्लियर खड़े होके। किसने पूछा भाई? हिंदी नहीं आता, इंग्लिश में बोल दो। अच्छा, ये जो अश्रत्नों की बात है, इसके बारे में जो कुछ आज तक बाबा ने बताया है, ये जोड़ी की बात नहीं, ये हैं इस टोटल एजुकेशन से निकली हुई आठ पहली आत्माएं, आठ आत्माएं जो संपूर्ण पवित्र हो जाती हैं, जिनकी प्योरिटी परफेक्ट हो गई, जो निरंतर योग युक्त हो गए, संपूर्ण सोल कॉन्शियस हो गए, जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं रहा, बिल्कुल शिव बाबा जैसे, ऐसी हैं ये आठ आत्माएं। इनमें से कोई जोड़ी बन सकती है, कोई सिंगल भी रह सकते हैं, पर बाबा ने कभी अव्यक्त में उत्तर दिया है कि इनके साथ हम शब्द प्रयोग करते हैं अष्ट देवता, इसका अर्थ है कि ये अष्ट रत्न है पहले आठ विश्व महाराजन। ये अव्यक्त मुरली में एक बार उत्तर आया था। इनके साथ जो इनकी युगल होंगी वो बाकी 16 दानों में से होंगी, आठ नेक्स्ट। ये आठ रत्नों का महत्व है, आठ आत्माओं का महत्व है। तो हम बात कर रहे थे कौन से ड्रामा साक्षी होने की, हमें भी ये ड्रामा प्रिय लगे। अब आप देख लें इस ड्रामा में क्या क्या अप्रिय लगता है। बहुत कुछ अप्रिय लगता है ना, अपने घर में ही बहुत कुछ अप्रिय लगता है, भाई ये सब अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमारी स्थिति को भी वैसा ही बनाना पड़ेगा कि स्थिति में ये नहीं होना चाहिए। समझ गए ना आप? जिसकी स्थिति ऐसी होगी, जो अपनी स्थिति में समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, साफ कर लें, वो ऐसा देख सकते हैं कि अपने परिवारों में भी ये नहीं होना चाहिए और वो नहीं होगा। ऐसी ताकत आ जाएगी आत्मा में, क्योंकि हम सभी के साथ एक स्थिति वो आनी है जब हम सब इतने पावरफुल होंगे कि हमारे संकल्प ड्रामा के पैरेलल चलेंगे, जो हम सोचेंगे वही ड्रामा में होगा। हम सोचेंगे ये नहीं होना चाहिए तो ड्रामा में भी वही है कि वो नहीं होना चाहिए। इतनी समानता आ जाएगी हमारे संकल्पों में और इस लंबे चौड़े ड्रामा में। एक तरह से वही स्थिति है जब हम इस ड्रामा के, इस प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, लेकिन सब आत्माएं नहीं। तो हमें ये ड्रामा प्रिय लगने लगे। स्वीकार कर लो, एक बहुत अच्छा सिद्धांत आप जीवन में अपना सकते हैं कि कुछ परिस्थितियों को जो अनअवॉइडेबल हैं, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें स्वीकार कर लो। स्वीकार करने से आपका डिस्टर्बेंस समाप्त हो जाएगा, आप अच्छे पुरुषार्थ के द्वारा उन परिस्थितियों को बदल सकेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप रात को सो गए, आपकी पेटी चली गई, आप जयपुर जाके उठे, आपने देखी पेटी तो है ही नहीं, अब आप क्या करेंगे? इतना ही हो सकता है कि पुलिस में रिपोर्ट कर लो, लेकिन वो जो चोर है वो पुलिस से भी तो दोस्ती की हुई होगी ना, वो कह देंगे भाई वो तो मारवाड़ में उतर गया होगा, अब हम तो बदल गए, हमारी ड्यूटी बदल गई, क्योंकि पैसा उनको मिल चुका है थोड़ा सा, आप क्या करेंगे? आप परेशान हो उठे, हो सकता है आपके 10-20 हजार रुपए हो या और कोई कीमती वस्तु हो, कागजात हो, लेकिन परेशान होने से क्या होगा? ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिनको मनुष्य को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उन्हें स्वीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना और ऐसी स्थिति बनाना कि वो परिस्थिति सदा के लिए खत्म हो जाए, ये है हमारे ज्ञान और योग की शक्ति। हमें याद रखना चाहिए, और मेरे जीवन का ये बहुत सुंदर लंबा चौड़ा अनुभव है, बाबा ने मुझे कभी कहा भी था ये बात, जहां एक पावरफुल आत्मा रहती हो, उसके वाइब्रेशंस के द्वारा सारा उसका कारोबार सहज रूप से सफलतापूर्वक चलेगा। ये बाबा ने मुझे 3-4 बार कहा है पूरे जीवन में, और मुझे इसके हजारों अनुभव हैं, हजारों, कि बाबा का सारा किचन का कार्य निर्विघ्न, नहीं तो आप समझ सकते हैं 2000 से ज्यादा ही भाई बहने रहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जैसे विघ्न है ही नहीं, मुश्किल से कोई मामूली सा आता होगा, वो भी सहज खत्म होता है। मुझे इसमें यही अनुभव है कि अगर वाइब्रेशंस पावरफुल हैं, सब कुछ विघ्नों से मुक्त है। इसी सिद्धांत को आप अपने लौकिक में अपनाएं, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है ये, इससे जीवन को पूरा निर्संकल्प निर्विघ्न बनाया जा सकता है। हम संकल्प से जब परिस्थितियों को बदल सकते हैं, तो सब मिलकर क्यों न विनाश को रोक दें? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझदार व्यक्ति ने प्रश्न लिखने की कोशिश की है। अब थोड़े दिन में ऐसा समय आएगा जबकि हम सभी ज्ञानी और योगी आत्माएं मन से ये आवाज निकालेंगे कि हे भगवान, हे बाबा, इस संसार को नष्ट करो, ये संसार रहने लायक नहीं रहा। विनाश तभी होगा जब इस संसार की हर आत्मा के मन से आवाज निकलेगी, हे भगवान, इस दुनिया में हम रहना नहीं चाहते, इसको नष्ट कर दो। नहीं तो कहेंगे ना लोग कि हे भगवान, इतनी अच्छी दुनिया थी, तुमने क्या किया? सब स्वीकार करेंगे कि विनाश हो जाए, इसलिए हम सब के संकल्प विनाश को रोकने के नहीं होंगे। हम दुख क्यों बढ़ाएंगे भला? हम सब के होंगे विनाश करके दुख की समाप्ति के। पर हां, अगर आप चाहें कि सब ब्राह्मण ये संकल्प कर लें कि विनाश न हो, तो वो रुक जाएगा, परंतु ये है नहीं, क्योंकि जब संसार में दुख बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी, अनैतिक काम होने लगेंगे, चरित्र भ्रष्ट दिखाई देगा सबका, तो हर समझदार व्यक्ति कहेगा कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही। इसलिए आवाज ही होगी विनाश की, और योगियों की ये आवाज ही वास्तव में विनाश करेगी। पशु पक्षियों की आत्मा कहां रहती है? उन्हें पाठ कैसे मिलता है? कितने ही पशु पक्षी अभी हैं नहीं, वो सतयुग आदि में कहां से आएंगे, या जो सतयुग में नहीं होंगे वो अब कहां से आए? नींद को कैसे जीते? 3 प्रश्न हैं भाई। परम धाम बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें एकोमोडेशन की कोई समस्या नहीं है, पशुओं की आत्माओं के लिए भी काफी जगह है, इसलिए जहां आपको अपने पशुओं को भेजना हो भेज सकते हैं। रही बात सतयुग में थोड़े जानवर होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते आते हैं। ये कैसे परिवर्तन होता है? क्योंकि सतयुग में बस्ती तो बहुत कम होती है और हम कह सकते हैं कि खाली स्थान जंगलात जैसा बहुत होता है, इसलिए ये संभव है कि दूर दूर के लैंड्स पर हर जीव प्राणी का कुछ न कुछ अंश, एक दो चार रहते ही हैं संसार में, परंतु उनसे मनुष्यों का कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए मनुष्य समझता है कि वो योनियां हैं ही नहीं, जो कि द्वापर के बाद कॉन्टेक्ट हो जाता है तो प्रकट हुई नजर आती है। ऐसा है कि अगर वहां सांप न भी हो तो इनके ही कुछ सूक्ष्म स्वरूप इस स्पेस में या कहीं भी लैंड पर होंगे ही, जो समय के अंतराल में वृद्धि को प्राप्त होकर सांप का रूप ले लेंगे। अगर आप वो पढ़े ना जीव शास्त्र, जो है मैंने तो बहुत नहीं पढ़ा, तो उसमें लोग बहुत सारी थ्योरीज की खोज कर रहे हैं कि जीव प्राणी कैसे कैसे एक से दूसरे में भी ट्रांसफर होते रहते हैं, उनके शरीरों की आकृति बदलती आती है क्लाइमेटिक इफेक्ट से, और उसमें भी त्रेता युग के बाद जो बहुत बड़ा एक फिर विनाश होता है उसमें ये सब परिवर्तन बहुत आ भी जाते हैं। बाकी इस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं और ज्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते। इतना जरूर है कि बीज रूप में हर योनि विद्यमान रहती है। नहीं, इनकी आत्माएं कुछ स्पेस में रह जाती हैं और कुछ चली जाती हैं। इनके भी भाई ये तो शिव बाबा से ही पूछना पड़ेगा जानवरों के पिता हैं या नहीं आदि पिता तो कोई जरूर होगा ब्रह्मा की तरह, जिससे शुरू हुआ होगा। नहीं, शिव बाबा ने ऐसे कभी नहीं कहा। बाबा तो मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, शिव बाबा जानवरों की आत्माओं के पिता नहीं। बाकी इतना अवश्य है कि जितने बाकी सब आत्माएं हैं, क्योंकि वो मनुष्य आत्माओं से प्रभावित हैं निरंतर, उनके पास अपनी चीजें नहीं हैं, उनका उत्थान या पतन, मुक्ति या जीवन मुक्ति, उनका प्योरिफिकेशन या तमोप्रधानता, वो मनुष्य आत्माओं पर निर्भर करती हैं। तो एक तरह से हम सभी महान आत्माएं उनके आधार मूर्त हैं। परमपिता हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, बाकी आधार मूर्त हैं। जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्रकृति है, पशु पक्षी है, सभी हमारे साथ पावन हो जाएंगे। नहीं, सतयुग में सबको तो साथ जाने की जरूरत नहीं है ना, जैसे मनुष्य थोड़े हैं तो जानवर भी थोड़े रहेंगे। रही बात निद्रा जीत बनने की, निद्रा जीत बनने का अर्थ ये नहीं है कि नींद बिल्कुल न की जाए। कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि बाबा तो 2 घंटे सोता था, हम भी 2 घंटे सोए, मामा तो 2 बजे उठती थी, हम भी 2 बजे उठे। ये थोड़ी सी यथार्थ रूप से समझने की बातें हैं। न ऐसा है कि बाबा कोई 2 घंटे ही सोता था, बाबा भी 4-5 घंटे सोते थे। मामा अगर 2 बजे उठती थी तो उस समय यज्ञ में नियम था 9 से पहले सो जाने का। इसलिए निद्रा जीत का अर्थ है नींद पर कंट्रोल होना, न कि बिल्कुल न सोना। उसके लिए भोजन अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, योग अच्छा, अपनी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कह सकते कि आप रात को 1 बजे सो रहे हो और 4 बजे उठ के योग का भी आनंद लेंगे, ऐसा संभव नहीं होगा। सतयुग 8+150 1250, 3200, 12+125 1500, इसकी सूक्ष्मता से विस्तार बताइए। देखिए, इसमें ऐसा है, छोटी सी बात है कि सतयुग में हम कहते हैं कि आयु 150 साल है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 150 साल आखिरी दिन होके कोई शरीर छोड़ेगा, या त्रेता में 125 साल है तो बिल्कुल सबके 125 साल ही उम्र होगी। ये तो एवरेज है, इसमें किसी के 2-4 आगे 2-4 पीछे, इस सब में 2500 साल कवर हो जाते हैं। इसलिए इसको कोई बहुत सीरियसली लेने की बात नहीं है। एक बार पढ़ाया बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, अर्थात क्या होता है, खुलने का तरीका क्या है? क्या भाई किसी का बुद्धि का ताला बंद हो गया, उसका खुलने का तरीका? ठीक है, चाबी आप लगा दें, ताला तो चाबी से ही खुलता है, और चाबी है बाबा का ज्ञान और मनमना भव। महाविनाश के समय ब्राह्मण आत्माएं कोई विनाश के समय आत्माओं की रक्षा करेंगी, कोई प्रत्यक्षता में मुख्य पार्ट बजाएंगी, कोई एडवांस पार्टी में चली जाएगी, कोई परम धाम में चली जाएगी। वो तो हरेक की कर्मों की गति के अनुसार उसको पार्ट मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि विनाश में ब्राह्मणों का विनाश नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आओ भाई पोखर भाई, सभी योग भी कर लेंगे, योग का जीत है।
ओम शांति। भ्राता जी ने समय के ऊपर क्लास कराई है, तो ये गीत में भी कुछ समय के बारे में संकेत दिया है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा, बात सुनाए भली भली, ले लो बच्चे हीरे मोती, बांटो जाके गली गली, बांटो जाके गली गली। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो मालो माल हुए, दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन और दौलत माया वालों, धन और दौलत माया वालों, बाबा कहे खरी खरी, ले लो बच्चे हीरे मोती, बांटो जाके गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन और दौलत माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी हो सी, आखर होगी चला चली, ले लो बच्चे हीरे मोती, बांटो जाके गली गली। मित्र प्यारे सब संबंधी, एक दिन तुझे बुलाएंगे, जिसको अपना कहता है तू वो ही आग लगाएंगे। देही का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली, ले लो बच्चे हीरे मोती, बांटो जाके गली गली। झूठे बंदे छोड़ दे धंधे, जप ले हरि के नाम को, क्यों करता तू मेरी मेरी, छोड़ दे झूठे काम को। निंदिया चुगली छोड़ दे पगले, निंदिया चुगली छोड़ दे पगले, बातें सुन ले भली भली, ले लो बच्चे हीरे मोती, बांटो जाके गली गली। जिसको अपना कर तू बंदे, तू इतना इठलाता है, छोड़ेंगे सब बीच में तुझको, संग न कोई जाता है। जगत मुसाफिर चार दिनों का, संगम है ये चार दिनों का, आखिर होगी चला चली, ले लो बच्चे हीरे मोती, बांटो जाके गली गली, बांटो जाके गली गली।
ओम शांति।